श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के प्रवचन। स्थान ब्रह्म मंदिर, ढाका, पूरी बंगाल। रविवार 9 जनवरी 1887 ईस्वी। उद्बोधन। परमेश्वर की पूजा अर्चना करना हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है। केवल उपदेश शास्त्र या लोगों के मुख से अच्छे प्रवचन सुनकर यदि उपासना करनी पड़ती तो अधिकांश लोग उपासना कर ही नहीं पाते। हम में स्नेह, प्रेम, आहार, निद्रा जैसे स्वाभाविक कार्य हैं, उपासना भी उसी प्रकार है। जैसे समय पर भूख प्यास लगती है वैसी उपासना भी लगती है। हम इस ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए समझ नहीं पाते। सोचते हैं देखा देखी या उपदेश सुनकर प्रचलित प्रथा अनुसार उपासना करते आ रहे हैं, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। उपासना संपूर्ण स्वाभाविक रूप से होती है। परमेश्वर ने हमारे भीतर जो प्रवृत्ति दे रखी है उसके कारण ही हम उन्हें पुकारे बिना नहीं रह पाते। बचपन से उनकी ओर ही गति है। कोई यदि सोते मोम या कपड़े से सुंदर फूल बना दे तो हम बनाने वाले की प्रशंसा ही करते हैं, उसके लिए युक्ति तर्क न करके उस निर्माता की स्वाभाविक रूप से प्रशंसा करते हैं। बचपन में माँ पर भी कैसा निर्भरशील भाव होता है। माँ सब कर सकती है, चांद पकड़ कर ला सकती है। अतः माँ की गोद में निडर होकर हिंसक पशु को भी लात दिखा सकते हैं। इस प्रकार बहुत कुछ कार्य करते थे। क्रमशः देखते हैं कि माँ वस्तुतः सब कुछ नहीं कर सकती। तब पहले की तरह माँ के पास न दौड़कर कुछ कार्यों को पूर्ण करने के लिए अन्य उपाय अपनाते हैं। पड़ोसी या राजा के पास जाकर जहाँ पर जो कार्य पूर्ण हो उसके निकट कार्य संपादन के लिए जाते हैं। और भी आगे चलकर जब जीवन में हम देखते हैं कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति या शक्ति संपन्न नहीं कर सकती, तब हमें उस अनंत शक्ति का आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है। बचपन से सबके पास रोकर या इशारे से अथवा कहकर ही प्रार्थना करते हैं। जब मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर कोई कार्य हो तो ईश्वर से ही स्वाभाविक रूप से प्रार्थना करते हैं। उनकी उपासना में स्तुति या प्रशंसा करते हैं और उन्हीं पर निर्भर करते हैं। यह सब सहज भाव से ही करते हैं। बाल्यकाल से ही हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। उपासना की इच्छा उत्पन्न हो तो प्राण व्याकुल हो उठते हैं। भूख प्यास न लगे तो जैसे खाया नहीं जाता, उसी प्रकार उपासना की इच्छा ठीक भाव से न जगे तो उपासना भी सरस रुचिकर नहीं लगती, केवल आडंबर लगती है। यह आत्मा की विकृत अवस्था है। रोग विकार होने पर औषधि चाहिए, वैसे ही आत्मा की विकृत होने पर प्रणाली अनुसार उपासना ही करनी पड़ती है। इसी प्रकार सामूहिक उपासना करने हम क्यों आते हैं? स्वभाव को फिर से ले आने के लिए। स्वभाव में व्याकुलता रहे तो जैसे सांस प्रश्वास रक्त प्रवाह सब समय चलता रहता है, वैसे ही स्वाभाविक उपासना भी होती रहती है। ईश्वर नित्य है और उनकी उपासना भी नित्य है। वे अनंत हैं तो उपासना भी अनंत होगी, उसमें आजकल ऐसी बात नहीं होगी। 8 दिन में एक बार उपासना करना है ऐसा भी नहीं, प्रतिदिन 3 बार या 5 बार ऐसा भी निश्चित नहीं है। यथार्थ धर्म उपासना अनंत है, नदी के स्रोत की तरह यह अनंत काल तक अविराम चलती रहती है। इसका केवल अभ्यास करना होगा, जिससे उन्हें प्राणों के प्राण जागृत प्रत्यक्ष देवता जान सके। ऐसा उपाय करना आवश्यक है। मेरी माँ, जगत जननी, मेरा सर्वस्व धन, ऐसा जब हम समझ लें तभी उपासना प्रारंभ हो जाती है। वही मेरी माँ, मेरा सहारा, अवलंबन, एकमात्र आश्रय स्थल, मेरी सुख संपदा, वे सभी ही मेरी माँ हैं। जिनसे ऐसा प्राणों का संबंध सदा सर्वदा से है, उन्हें पा सकें, अनुभव कर सकें, इसलिए हम आए हैं। करुणामय दीन बंधु परमेश्वर, ऐसा ही करें, हम उनकी चरणों में शरण लेते हैं। उपदेश। एक अंधा भिखारी राह में चलता जा रहा था, अचानक आंधी तूफान आया। अंधेरी रात, चारों ओर आंधी, कुछ न देख पाने वाला अंधा एक कुएं में गिर पड़ा। गिरकर वह चिल्लाने हाहाकार करने लगा। आंधी रुकने पर चारों ओर से लोग उसकी आवाज सुनकर आए तो देखा कि एक अंधा कुएं में गिर पड़ा है। सबने उसे उठाने के लिए प्रयत्न किया तो अंधे ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम लोगों ने मुझे गिराया था? उन्होंने कहा, नहीं, हम क्यों गिराने चले, हम यहीं रहते हैं। तुम अंधे हो और कुएं में गिरकर चिल्ला रहे थे, इसलिए हम सब उठे, तुम्हें उठाने आए हैं। अंधे ने कहा, तुम सब चले जाओ, जिन्होंने मुझे गिराया है जब वे ही आकर उठाएंगे तभी उठूंगा। लोग अवाक रह गए और चले गए। अंधा फिर रोने चिल्लाने लगा। कुछ देर फिर कुछ लोग रस्सी डालकर उठाने आए, उन्हें भी पूर्ववत जवाब मिला। कई लोग आए और चले गए। अंधे की एक ही रट लगी, जिसने मुझे उठाया है, जिसने मुझे गिराया है वही उठाएगा, तभी उठूंगा। अंतःकरण की व्याकुल पुकार से अंत में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने रस्सी फेंककर उससे कहा, उठो, मैंने ही तुम्हें गिराया था, इसलिए उठाने भी आया हूं। अंधे ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, जिसने मुझे गिराया है वह सब कुछ कर सकता है, उसकी इच्छा मात्र से मैं उठ सकता हूं, फिर रस्सी की क्या आवश्यकता है? उसके दृढ़ विश्वास के कारण भगवान की कृपा हुई, उन्होंने उसे उठाकर नेत्रदान किया और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। यह एक साधारण कहानी मात्र है और सुनकर कुछ भाव आता है, पर विचार करके देखें तो इसमें दृढ़ विश्वास का आश्चर्यजनक फल नजर आता है। यदि परमेश्वर त्राण न करें तो पापियों का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है, वे ही उद्धार करते हैं। केवल यही नहीं, विश्व के सब कुछ में उन्हीं का हाथ है, उन्हीं की इच्छा क्रियाशील है। पेड़ का सूखा पत्ता गिर रहा है, तितली उड़ रही है, दुबों ने हरित शोभा धारण कर रखी है, इन सब में एक तृण से सागर, पर्वत, ग्रह नक्षत्र तक सभी में वही एक महाशक्ति क्रियाशील है। उनके सिवाय एक कीट को बचाने की भी किसी में ताकत नहीं है। उनकी कृपा या उनकी शक्ति को छोड़ कुछ है ही नहीं और ना कुछ हो सकता है। इस महासत्य को जिन्होंने हृदय से अनुभव किया है वही कह सकता है, जिसने गिराया है वही आकर उठाएगा। शिशु माँ का हाथ छोड़ते ही गिर पड़ता है। हम भी जब अपनी शक्ति के सहारे उन्हें पकड़ते हैं तब निरापद नहीं हो पाते, कभी कभी उनका हाथ छूटते ही गिर पड़ते हैं, पर जब वे पकड़ते हैं तब हम नहीं गिर पाते। आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा, रास्ते में चलते चलते पिता की अंगुली पकड़कर चलने वाला बालक जब बार बार गिरता है तब अंत में उसके पिता स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तब वह गिर नहीं पाता। गिरने भी लगे तो पिता ही स्वयं संभाल लेते हैं। सभी परिस्थितियों में यदि हम जान लें कि वे ही एकमात्र उद्धारकर्ता, रक्षाकर्ता और सहायक हैं, तब संपदा विपदा में सर्वदा वे सम्मुख आकर अवश्य रक्षा करते हैं। यह सत्य है और जीवन में परिचित सत्य है, कल्पना नहीं है। ये हम यह भूल कर भ्रम में पड़ते हैं और सोचते हैं कि हमारे कितने आत्मीय बंधु हैं, कितना बल है, धन है, इन्हीं से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यह सब कहाँ चला जाता है, जिसे अत्यंत घनिष्ठ मित्र समझते हैं, बड़ा ही सहायक मानते थे, वे या तो पीड़ित होकर, निर्धन होकर या उनकी मृत्यु होकर हमें असहाय कर छोड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में संसार में ऐसी कौन सी वस्तु या कौन सा व्यक्ति है जिसे हम पकड़ कर रख सकें। हम कहते हैं ये मेरा मित्र है, मेरा साथी है, पर अपना संगी साथी वस्तुतः कोई नहीं। जब जन्म लिया, माँ की गोद में रहा, उस समय किसी को भी तो नहीं पहचानता था, यहाँ तक माँ को भी नहीं पहचानता था, तब संपूर्ण असहाय शक्तिहीन था, तब मेरी रक्षा कौन करता था। वास्तव में हम अपने जीवन या अवस्था की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं। मुख से परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं पर समझते नहीं हैं कि ये केवल पुस्तक की बात नहीं है या कथा कहने की विषय नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। कीट से भी असहाय शैशव अवस्था में उन्होंने ही रक्षा की है, और हम सोचते हैं कि हाथ पर रहते या हम अपनी स्वयं रक्षा स्वयं नहीं कर लेंगे, पर हाय, जरा सिर दर्द हो, कह दस्त हो या नदी में तूफान आ जाए, तब कहाँ रहती है हमारी विद्या बुद्धि और कहाँ रहता है हमारा पांडित्य या बाहुबल। थोड़ा सा भूकंप हो या नाव उलट जाए अथवा दुर्घटना हो जाए तो कहाँ मैं और कहाँ मेरी शक्ति रहती है। जब शिशु था तब जो रक्षक थे अब भी वे ही हैं, यथार्थ में वे ही रक्षा करता हैं। यह सब आश्रय जो भी हम सोचते हैं कोई किसी का नहीं, सब स्वप्न है, स्वप्न है। यदि उन्हें ही एकमात्र अपना समझकर न पकड़ सके तो कोई किसी का नहीं। सत्य तो यही है कि वे ही गिराते हैं और वे ही उठाते हैं। यह ठीक से समझ लें और दृढ़ विश्वास करके या कह सकें तो वे अवश्य ही रक्षा करते हैं। दुख, शोक, रोग, यंत्रणा से कोई भी नहीं बचा सकता है। प्रभु, तुमने ही गिराया है, तुम ही उठाओ। मैं यह शोक, रोग, जलन, यंत्रणा दूर नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा रस्सी दे तो नहीं उठूंगा। तुम सब कर सकते हो, तुम ही उठाओ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे हम पकड़ें तो वे भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उनमें ऐसी शक्ति या सामर्थ्य नहीं है, चाहे वे सर्वशक्तिमान ही क्यों ना हो। वे दयालु भी जो हैं, मेरा और कोई स्थान, उपाय या ठौर ठिकाना नहीं है। इस प्रकार आंतरिक भावना से यदि उन्हें पकड़ें तो वे भी स्वयं को छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि वे मेरे प्रभु ऐसे दयालु भी जो हैं। पर यदि सोचे और भी कोई सहारा है तो गए, फिर कुछ नहीं होने का, नहीं तो उन्हें सर्वदा अपने पास ही पाएंगे। जब चाहो जब पुकारो सामने वे यत्र तत्र दिखाई पड़ेंगे, यह निश्चित है। बचपन में चींटी काटे या भूख लगे अथवा गिर पड़ो तो रोने लगता था, वैसे ही माँ आती थी, दौड़कर आती थी और उठा लेती थी। उनके आने के लिए रात दिन नहीं, आ निद्रा सुख सुविधा कुछ नहीं, बच्चा पुकारे तो फौरन दौड़कर माँ आ जाती है। यह प्रेम किसका है, यह स्नेह किसका है, यह स्नेह कहाँ से आता है? उसी जगत जननी, जननी की जननी का ही है। दृढ़ विश्वास हो तो उन्हें सर्वदा निकट पाया एवं देखा जा सकता है। हमें भूख लगे तो तुरंत आहार ले आएंगे, जरा भी कष्ट हो तो वे आ जाते हैं, उन्हें ही मन की सारी बात कह डालते हैं। वे ही दूध आहार देते हैं, चींटियों कीड़ों को हटाते हैं, सब कर देते हैं। यह सत्य घटना सबके जीवन की है, इसे कोई देख नहीं रहा है, पर कोई कोई भाग्यवान इसे देखता भी है। इस विश्व राज्य का कर्ता राजा एकमात्र वे ही दीन बंधु दीनानाथ हैं, वे ही जगत ब्रह्मांड के कर्ता हैं, पर इससे मेरा मन नहीं भरता है। मैं दुखी गरीब कंगाल हूं तथा वे ही मेरे प्राणनाथ मेरी माँ हैं। मुझे कोई भय चिंता या फिक्र नहीं है, दुख शोक पाप ताप सब नष्ट हो जाता है। प्राणों से एक बार दीन बंधु हे दयाल ठाकुर कहकर पुकारते ही सब चला जाता है, पाप जाता है, प्रताप जाता है, शोक भार चला जाता है। यह सत्य है, वे ही ऐसे प्रत्यक्ष प्रभु हैं, उन्हें प्रत्यक्ष देखकर प्राणों से सर्वदा पुकार सकें, यही प्राणों की एकमात्र कामना है, आशा है। और मैं कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।